प्रथम खंड, ऊषा और ईश्वर। जीवन की गहनतम घटनाएं किसी अनजान क्षण में हो ही जाती है। घोर पीड़ा का अनुभव सदा ही रहस्यपूर्ण होता है। उसकी अनुभूति स्पष्ट है, किंतु उसका अंकुर कब, कहाँ, कैसे फूटा यह पता नहीं चलता, क्योंकि इसके लिए हम उस समय चौकन्ने नहीं होते। उसका जन्म भी इसी प्रकार अनजाने में हो गया था। देहात से भी बाहर एक वीरान भूमि में बहुत से टूटे फूटे खंडहरों के पास लगे हुए एक खेमे में उसका जन्म हुआ था। उस समय उसका पिता वहां उपस्थित नहीं था। उस समय उसकी माँ भी बेहोश थी, दाई थी, पर एक तो प्रत्येक घटना को, प्रत्येक पीड़ा के उद्भव को देखने वाला कोई ना कहीं होता है। प्रकृति के प्रत्येक उफान का रहस्य कोई ना कोई तो समझता ही है, पर जब हम किसी का परिचय नहीं जानते, जब हम उस द्वारा प्राप्त ज्ञान और अनुभूति का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर पाते, तब हम कहते हैं कि वह है ही नहीं। उस नवजात शिशु ने अपना जन्म का अनुभव किया था या नहीं, या कोई नहीं जानता। वह उस समय सचेत भी था या नहीं, इसका भी निर्णायक कोई नहीं है, क्योंकि प्रसूति बेला का कोई निश्चित वृत्तांत कहीं नहीं मिलता। सुनी सुनाई इतनी बात का पता अवश्य है कि उस समय के लगभग संध्या हो चुकी थी। पक्षी चिल्ला चिल्लाकर घोंसले में सिमट कर किसी समाधिष्ठ जिज्ञासा में, किसी क्रियाहीन विस्मय में चुप हो गए थे, और उन खंडरों पर पहरा देने वाली चौकीदार ने कोई बेसुरा सा राग अलापते हुए इधर उधर घूमना आरंभ कर दिया था। पर जैसे पीड़ा की स्पष्ट अनुभूति के बाद उपचार होने लगते हैं, वैसे ही जब उसकी माँ ने जागकर थके हुए स्वर में कहा हाय, तब सब और चहल पहल मच गई। तब उस नवजात शिशु को धोकर और साफ करके ब्राह्मण कुमार की उपयुक्त शरीर दिया जाने लगा। तंबू में बसने वाले 5-4 प्राणियों की दौड़ धूप होने लगी, इधर से उधर, उधर से इधर, निरर्थक निरुद्देश्य। तब उसके पिता भी आए। उसे देखभाल कर उसका घींचा घींचा शरीर कुछ ढीला हो गया। उनके मुख पर किसी अनिष्ट निवारण की इच्छा में सिमटी हुई झुर्रियाँ बिखर कर खो गई, और वे किसी आधे सुखपूर्ण आधे संतुष्टपूर्ण विचार में चुप खड़े रहे। तब पंडित पुरोहित भी आए, और बिद्धू बिच्छू भी, और सभी अपने अपने संसार में उस नवजात शिशु का स्थान निर्दिष्ट करने में, अपने जीवन विधान की श्रृंखला में एक कड़ी उनके लिए जोड़ने में जुट गए। जिन खंडरों के मध्य में उसका जन्म हुआ था, वह एक बिद्धू विहार के खंडर थे। वहां उसी दिन गौतम बुद्ध की अस्थियों की एक मदरुषा निकली थी, जिसकी उपासना करने वे भिक्षु उसके पिता के पास अतिथि होकर आए थे। वहां आकर जब उन्होंने देखा कि उसी दिन इस शिशु का जन्म हुआ है, तब उन्होंने पिता से कहा, यह शिशु बुद्ध का अवतार है, इसको बौद्ध धर्म की दीक्षा देना। पिता ने कहा अच्छा। जो पुरोहित आए हुए थे, उन्होंने कहा यह लड़का ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है, इसके संस्कार भी कुल के उपयुक्त होने चाहिए, और बुद्ध के प्रभाव से यह अहिंसा का पुजारी होगा और ब्राह्मणत्व के नाम उज्ज्वल करेगा। माँ ने कहा ठीक है। पिता ने कुछ सोचते सोचते कहा इसका नाम बुद्धदेव रखना चाहिए। माँ ने मन ही मन कहा मैं तो इसे टाऊ कहूंगी, और प्रत्यक्ष बोली मैं इसकी ओर से प्रण करती हूँ कि इसे आजन्म में निरामिष भोजी रखूंगी। पिता ने मन ही मन निश्चय किया मैं इसे इंजीनियर बनाऊंगा ताकि यह नए नगरों का निर्माण करे। माँ ने मन में कहा मेरा टाऊ बैरिस्टर होगा और पाप पीड़ितों की रक्षा करेगा। इस प्रकार बोध होने से पहले ही बालक का जीवन एक रूढ़ी में बंध गया। बहुत से अनुभूत किंतु सुदृढ़ बंधन उसके जीवन में छा गए, वह बिक गया। कहते हैं कि मानव अपने बंधन आप बनाता है, पर जो बंधन उत्पत्ति के समय से ही उसके पैरों पर पड़े होते हैं और जिनके काटने भर में अनेक के जीवन बीत जाते हैं, उनका उत्तरदायी कौन है? पंडितों से पूछो, भिक्षुओं से पूछो, क्योंकि उन्होंने भी क्या क्या बंधन मन ही मन निर्दिष्ट किए थे, कोई नहीं जान पाया। एक स्वर पूछता है यह सब तुमने कैसे जाना? यह हम शायद कभी इस बात का ध्यान नहीं करते थे कि शिशु में एक संपूर्ण मानव चेतना का उदय कब से होता है। तब इस बात का ध्यान कौन करता होगा कि शिशु में मानवीय चेतना से किसी दर्जे की अनुभूति जो केवल अंकित करती है, अनुरेख को समझती नहीं, उसके संबंध में कोई इच्छा नहीं करती, कब उत्पन्न होती है। पर शिशु शायद जिस समय आकारहीन मांसपिंड भर होता है तभी से एक वह अमित छाप ग्रहण करने लगता है जो उसके उत्पन्न करने वाली तत्कालीन शक्तियों को ही नहीं होती, वरना उससे पहले हुए असंख्य घटनाओं और बाद में होने वाले असंख्य परिवर्तन को भी होती है या छाप पड़ जाती है और पड़ी रहती है, व्यक्त नहीं होती, हमारी चेतना में नहीं आती तब तक जब तक कि किसी आकस्मिक प्रेरणा की चोट से किसी ना समझ आने वाले आघात से वह स्पष्ट होकर लहर की तरह हमारे जीवन में नहीं फैल जाती। यह जन्म के समय की बातें हैं, स्वयं उसके अपने मस्तिष्क के अनुलेख तो शायद नहीं है, किंतु वह नहीं कह सकता कि या उसके कहां से पाए, कैसे पाए या पाए भी या नहीं, क्योंकि ये शायद आसन के विभिन्न मौकों पर विभिन्न अशब्द वाक्यों को सुनकर, टूटी टूटी मुद्राओं को देखकर, टूटे टूटे आवृत विचारों को किसी प्रगुण अंतर शक्ति से भाप कर एकत्रित किए गए मन चित्रों का पुंज है। किंतु कुछ बातें ऐसे भी हैं जो ऐसे प्राप्त की नहीं हो सकती, जो कभी कोई कहता नहीं, कोई सोचता नहीं। ये बातें उसके मन में कैसे आती है, ये चित्र उसकी स्मृति पटल पर कैसे दिखते हैं, कभी कभी वह स्वयं सोचता है तब उससे उसका कोई समुचित उत्तर नहीं मिलता। यह सब चित्र सुनाई हुई बातों का फल है या उसकी अपनी स्मृति के या उसने सोचते सोचते ही आत्म सम्मोहन की शक्ति से अपने को विश्वास दिला लिया है कि उसने ये दृश्य देखे, ये अनुभव प्राप्त किए। यह प्रश्न अब भी प्रश्न ही है और प्रश्न ही रहेगा, पर वे चित्र और वे दृश्य उसके लिए वास्तविक है, वह उसका अब भी अनुभव कर सकता है। इसिंगत गर्मी से भरे हुए छोटे छोटे हाथ, एक समुद्र में तैरती सी अनुराग भरी आंखें, काले काले तारे, स्तन नाक की नोक पर एक कोमल हल्की गर्म रगड़, एक लंबी सी सांस की गति जिस पर वह धीरे धीरे उड़ता है और गिरता है, जैसे समुद्र की बिछन पर तैरती हुई कोई वस्तु उठे और गिरे, वे सब क्या है? श्रुतियां, स्मृतियां या आत्मीयों जनित भावनाएं जिनकी सत्यता कुछ नहीं। ऐसी ऐसी स्मृतियां या अर्ध स्मृतियां तो अनेक है, किंतु यह एक विचित्र बात है कि उसके जीवन की जो सबसे पहली दो एक घटनाएं उसे ठीक तौर पर अपनी अनुभूति से याद है, वे उन दिनों महती प्रेरणाओं का चित्रण करती है जो प्रत्येक मानव के जीवन का अनुशासन करती है, अहंता, भय और सेक्स। क्यों इन तीनों शक्तियों का इतना शीघ्र उद्भास जीवन की पहली पहली स्मृतियों में उनका विद्यमान होना या जताता है कि ये कितनी महत्वपूर्ण है कि मानव उन्हें अपना मानवता के साथ ही पाता है, बाकी परिस्थितियां या व्यवहार से नहीं। उन स्मृतियों में कौन पहली है, कौन बाद की, इसका निरूपण करना कठिन है, क्योंकि वे लगभग एक ही काल की है, इसलिए उन्हें एक ही स्मृति के दो पर्दों की भांति साथ साथ सिखा देने का ठीक है, क्योंकि वे मिलकर किसी बात को दिखाती है। उसका नामकरण हो चुका है, उसने बड़ी बड़ी आंखों से होम की अग्नि भी देख ली है और अपने भोले कानों में कोई फुसला फुसला कर कहा हुआ मंत्र भी सुन लिया है। उसकी आयु होगी करीब 3 वर्ष, किंतु उसका भोला विजय दर्प ऐसा है जैसा नेपोलियन लाख वर्ष तक विजय रहकर भी नहीं प्राप्त कर पाता। वह अपने को उत्तरदायी समझने लगा है और गंभीर रहता है, इसलिए उसे अपने बड़ों से भी सम्मान और यह विश्वास मिलता है कि वह वास्तव में काफी बड़ा हो गया है। उसे कभी कभी काम भी बताए जाते हैं जिन्हें वह अभिमान भरी प्रसन्नता से करता है। आज भी उसे एक काम देकर भेजा गया है, उसका भाई बीमार है, अतः उसे कहा गया है कि जाकर डॉक्टर को लिवा आए, और वह इसलिए घर से चलकर इतनी इतनी डॉक्टर के पर घर के पद पर आया है।
किंतु उसकी उत्तरदायित्व भावना यहीं तक है कि उसे कोई महत्व का काम सिपूर्ति किया जाए, उसे करने ही के विषय में वह अपने को बाध्य नहीं समझता। कई बार काम मिलने की प्रसन्नता में वह उसे करना ही भूल जाता है, जैसे आज इतनी दूर आकर वह अब कर्तव्यनिष्ठ दूत नहीं फिर एक बालक बन गया। उसके मन की हंसी जाग उठी है और उसे खेल के लिए बुलाती है। उस स्वर से जितनी उपेक्षा कोई भी आत्मविमान बालक नहीं कर सकता। सड़क की ओर जो गोल सा लाल लाल लेटर बॉक्स है, उसी ने बालक का ध्यान आकृष्ट किया है। वह किसी तरह उस पर चढ़ गया है, ऐसे सवार है जैसे घोड़े की पीठ पर हो और उसकी चोटी पर लगी हुई खुंटी को एक हाथ से रह रहकर ऐसे घिसता है जैसे वह लगाम हो। दूसरे हाथ से वह अपने घोड़े की गर्दन थपथपा रहा है जैसे उसने पिता को करते देखा है। वह सम्राट है, अपने विजय घोड़े पर बैठा है और संसार को ललकार रहा है। जब भी कोई राही उसके पास से होकर निकलता है तब वह उसे मुंह चिढ़ाता है और पुकार कर जो मन में आता है वह कह डालता है। वह अपने मन में सम्राट है और राहियों के मन में एक अद्भुत शिशु, इसलिए कोई उसका उत्तर नहीं देता, रुष नहीं होता, उसकी ओर देखता चला जाता है। वह संसार में एक लेटर बॉक्स की ऊंचाई भर ऊंचा है। अपने इस आसान से वह सारा संसार देखता है, उसकी शुद्धता पर हंसता है। तभी डाकिया शुद्ध संसार का शुद्ध डाकिया कभी उसके स्वप्न के तोड़ देता है, उसे वहां से उतर जाने को कहता है और उसके तत्काल ना मानने पर झटक कर फिर कहता है। तब हते भाव शिशु सम्राट अपना बदला भी लेते हैं कि उतरते समय डाकिए की उंगलियों पर ही गिरते हैं, उन्हें कुचल देते हैं और भाग जाते हैं, पर घर पहुंचकर ही दम लेते हैं और फूले ही श्वास को शांत करते करते अपने को विश्वास दिला देते हैं कि अब वे विजयी हैं। जबकि सहसा पिता की हथेली का आघात उन्हें याद दिलाता है कि वे छोटे से पराजित शिशु भर हैं, जिसे डॉक्टर को बुलाने भेजा गया था और जो उसे बिना बुलाए ही बिना उसके घर गए ही लौट आया है, और वह भी घंटा भर लगाकर। और दूसरी स्मृति, वह अकेला अजायब घर में फिर रहा है, उस कमरे में जिसमें वन्य और हिंसक पशु प्रदर्शित किए गए हैं। एकाएक वह देखता है उसके सामने एक भीमकाय बाघ प्रकट हो गया है, एक पंजा झपटने के लिए उठा, भयंकर दांत, वह जीभ, अरक्त आंखें और चीख कर वह हो उठता है, भय से विकल होकर और भागता है। वह बाघ केवल एक चर्म के अंदर भरा हुआ भूस है, यह बात बालक नहीं जानता। वह भागता है, उसे जान पड़ता है कि वह बाघ उसके पीछे चला आ रहा है। क्षण भर में उसे पाल लगाकर वह घुमा देकर नहीं, क्योंकि उन दांतों को, उस जीभ को, उन आंखों को फिर नहीं देखना चाहता। और वह अकेला है, कोई उसका डर दूर करने वाला नहीं। वह किसी तरह बाहर आकर तक आ पाता है और सड़क पर भागता है। तभी एक चपरासी उसे पहचान कर पकड़ लेता है, गोद में उठा लेता है और वह अपने को भागने में असफल पाकर बड़े जोर से चीख उठता है कि अब वह बाघ झपटा। जो नहीं झपटता काफी देर तक नहीं। तब शिशु डरते डरते घूम कर देखता है, उसे वह ना पाकर आश्वासन की सांस लेता है। वह डर उस समय दब गया, किंतु उसने शिशु के मन में घर कर लिया। उस दिन के बाद उसे भयंकर स्वप्न आने लगे। रात को वह चीख चीख उठता और कभी जाकर यदि पाता कि कमरे में अंधेरा है तब तो वह अंधकार एक नहीं असंख्य बाघों से सजीव हो उठता। एक से एक हुंकार उस दिन से उसके कमरे में रात भर प्रकाश रहने लगा, किंतु किसी ने ना जाना नहीं कि उसे क्या हुआ है, हो गया है, क्यों उसे ऐसे भयंकर स्वप्न आने लगे हैं, क्यों वह दुबला और चिड़चिड़ा होता जा रहा है। वह डर अपने आप ही मिटा। एक बार वैसा ही भाग उसके घर लाकर रखा गया और वह बहुत मुश्किल से अपने भाइयों को देखा देखी वह उसके पास भी गया, उसकी पीठ पर भी बैठा और उसे निर्जीव पाकर साहस करके उसके मुंह में हाथ भी डालकर देखा। तब डर एकाएक उड़ गया। तब शिशु ने चाकू लेकर उस खाल को फाड़ डाला उसके भीतर की घास फूस को बिखर कर हंसने लगा। इसका एक और गहरा असर भी हुआ। शिशु ने जाना डर डरने से होता है। संसार की सब भयानक वस्तुएं हैं केवल एक घास फूस से भरा निर्जीव चाम जिसमें डरना मूर्खता है, और यही वह आज तक समझता है या उसका विश्वास अब भी है कि जब कोई भी भयानक वस्तु देखो तब डरो मत, उसका बड़ा चाम काट डालो, उसके भीतर भरी हुई घास भूस निकाल कर बिखरा दो और हंसो। इसने उस उद्धृत बनाया है, लोग कहते हैं कि विध्वंसक और हिंस भी बना दिया है, पर वह जानता है उस चाम को फाड़ देने पर उसे दंड मिला था, और उसके बाद कई बार ऐसा मिथ्या डर का नाश करने पर उसे दंड मिला, क्योंकि डर के बिना समाज का अस्तित्व नहीं ठहर सकता। और आज भी वह एक बड़े भीम का ही डर का भीतरी खोखलापन दिखाने के अपराध में पकड़ गया है और दंड की प्रतीक्षा में है, और चूंकि उसने संसार के सबसे बड़े डर शासन के डर पर आघात किया है इसलिए उसका अपराध सबसे कठोर दंड मांगता है। किंतु वह हंसता है क्योंकि उसने विजय पाया है। और तीसरी स्मृति, वह भक्ति विभत्स है, उसका ठीक ठीक रूप उसका मूल कारण मुझे याद नहीं, याद केवल उस समय की मन स्थिति व भावना जिसके लिए मैं खड़ा हूं। मैं वह शिशु को दृश्य देख रहा हूं, याद नहीं कि क्या, किंतु याद है कि उसमें कुछ अनिश्चित कुछ वर्जित कुछ घृणास्पद कुछ जुगुप्सा जनक है, और यही के अनुकूल भावना उसे देखकर उसके मन में उठ रही है। वह अवर्ण्य है, उसे वे ही समझ सकते हैं जो कभी वासना से उत्पन्न हुए पाप कर्म के किनारे तब पहुंच कर लौट आए हैं, किसी बाह्य रुकावट या नियम या असमर्थ या डर से नहीं, एक आंतरिक स्वतः उत्पत्ति ग्रानी के कारण, और जीवन का भी उन्हीं का है। नियमों के अनुसार चलना आसान है, और संसार ऐसे व्यक्तियों का आदर भी करता है जो नियमानुसार चलते हैं, किंतु जीवन बाध्य नहीं है कि वह आसान हो या आदर का पात्रता दे। जीवन इससे परे है, नियमों में नहीं बंधता और यशोलिप्सा से ऊंचा है। जो नियमों से नहीं चलते किंतु नियमों की मूल प्रेरणा को समझकर अपना नियम स्वयं बनाते हैं, जीवन तो उन्हीं का है। प्रेम ने मनुष्य को मनुष्य बनाया, भय ने उसे समाज का रूप दिया, अहंकार ने उसे राष्ट्र में संगठित कर दिया। शिक्षा देना संसार अपनी सबसे बड़ा कर्तव्य समझता है, किंतु शिक्षा अपने की मन की शिष्य के मन की नहीं है, क्योंकि संसार का आदर्श व्यक्ति व्यक्ति नहीं है, वह टाइप है, और संसार चाहता है कि सर्वप्रथम अवसर पर ही प्रत्येक व्यक्ति की ठोक पीट कर उसका व्यक्तित्व कुचल कर उसे उस टाइप में सम्मिलित कर लिया जाए, उसे मूल रचना ना देकर एक प्रतिलिपि मात्र बना दिया जाए। और यह शिक्षा दी कैसे जाती है? जो निर्धन होते हैं वे बचपन से ही ठूकते पीटते हैं,